नमस्कार शिक्षार्थी और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थी और श्रोताओं, आज जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, उसका सब्जेक्ट रहेगा मास कम्युनिकेशन। और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है जनसंपर्क एक परिचय भाग दो। जी हाँ, इसका पहला भाग हम आपको सुना चुके हैं, आज इसका दूसरा भाग आपको सुनाने जा रहे हैं। और भाग दो में आज हम चर्चा करेंगे भारत में जनसंपर्क का उद्भव। इस शीर्षक पर अधिक जानकारी दे रहे हैं श्री सुनील कुमार जी। तो आइए शिक्षार्थियों, मिलकर सुनते हैं कार्यक्रम जनसंपर्क एक परिचय के अंतर्गत भारत में जनसंपर्क का उद्भव।
नमस्कार प्यारे श्रोताओं, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि संप्रेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित तीन एक के बाद दूसरे आने वाले चरण शामिल होते हैं। जनसंपर्क किस तरीके से कार्य करता है इसके बारे में मैं आपको याद दिला दूं, जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए। जनसंपर्क तीन मेजर काम करता है। पहला काम करता है जागरूकता, यानी कि अवेयरनेस को फैलाने का काम करता है, संदेश जनता तक पहुँचाना, टू अवेयर द सोसाइटी, टू अवेयर द पब्लिक और टू अवेयर द मास, बड़े स्तर पर भी छोटे स्तर पर भी। जनसंपर्क का काम जब किया जाता है, जनसंपर्क जब करने की बात आती है, जनसंपर्क शब्द जब हम लोग जोड़ते हैं तो जनसंपर्क का मतलब है जन से संपर्क, वो भी अच्छी बात है, लेकिन जब बड़े स्तर पर हमको कोई संपर्क करना होता है, जनता के साथ में संपर्क करना होता है, तो इसको हम लोग जनसंपर्क का रूप दे देते हैं। स्वीकार्यता मतलब कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी, मैसेज की एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी सोसाइटी के अंदर में, इस बात पर भी ध्यान देना होता है कि जनता को संदेश के साथ राजी होना चाहिए कि जो भी मैसेज जनसंपर्क के अकॉर्डिंग, प्लानिंग के अकॉर्डिंग जनता में, सोसाइटी में डिसिमिनेट किया जा रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाले उस मैसेज के बारे में माने, उसको समझें, उसको जाने और अपना एक्सेप्टेंस दें, यानी स्वीकार्यता दें। और तीसरा होता है कार्यवाही, मतलब इसके अनुसार जनता को कार्रवाई करनी चाहिए या अंतर्क्रिया करनी चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कोई मैसेज आप तक पहुंचा, कोरोना के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का जो मैसेज आया कि आप दो डोज लगवाना है या मास्क बहुत ज़रूरी है, तो ये मैसेज एक जनसंपर्क अभियान के तहत जनहित में जारी हुआ और इस अभियान को लगातार सरकारों ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने और कम्युनिटी लेवल पर, क्योंकि देखिए मुख्य उद्देश्य होता है, सरकार हो या कोई कंपनी हो या फिर कोई एफएमएसजी प्रोडक्ट हो, इन सब का जो मुख्य लक्ष्य है वो अंतिम रूप में व्यक्ति पे ही आ जाता है, इंडिविजुअल पे आ जाता है। और इंडिविजुअल तक संपर्क करने के लिए आप कम्युनिटी के माध्यम से इंडिविजुअल तक पहुंच सकते हैं, यह एक आसान तरीका है। तो जनसंपर्क करने के बहुत सारे फायदे हैं। फायदा यह है कि जब मैसेज, मान लीजिए कि एक पर्सन टू पर्सन को पकड़ना, एक इंडिविजुअल को पकड़ के मैसेज को समझाना, एक इंडिविजुअल को पकड़ के उसको नॉलेज देना, उसको जागरूकता कराना, ये थोड़ा सा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए हम लोग जनसंपर्क के माध्यम से क्या करते हैं, कम्युनिटी कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिटी के थ्रू इन्फॉर्मेशन को थ्रो करते हैं। और कम्युनिटी के अंदर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जल्दी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा देर में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, बाद में इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते। तो जो लोग इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते, अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं, उनका बड़ा वो कम्युनिटी में इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने का फ़ायदा क्या हुआ, या मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है ये जो इन्फॉर्मेशन है कम्युनिटी तक पहुंची, उसका क्या फ़ायदा हुआ। उसका फ़ायदा हुआ कि जो जनसंपर्क के माध्यम से एक प्लानिंग की गई और सूचना जो है केंद्र स्तर से उठ करके स्टेट, राज्य और राज्य के बाद में डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद में ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के बाद में और छोटी कम्युनिटीज़ में वहाँ तक पहुँची। अब पहुंचने के बाद में हर जगह पीआर का फॉर्मूला पहले ही स्ट्रेटेजिकली बना दिया गया था कि ये इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से हम वहां तक पहुंचाएंगे। तो जो बड़ी बात यहां पर हुई वो यह हुई कि कई बार कम्युनिटी में लोग आपस में पब्लिक रिलेशन का काम करते हैं, जब इन्फॉर्मेशन नीचे स्तर पर पहुंचती है तो वहां पे जो भी लाभदायक चीजें होंगी या जो भी रिक्वायर्ड जानकारी चाहिए तो वो सोसाइटी के अंदर ऑटोमेटिकली स्प्रेड होती है और गवर्नमेंट को फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी नहीं पड़ती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे किसानों के लिए भारत सरकार ने किसानों के लिए 2000 रुपये की राशि, छोटी जोत के किसानों के लिए 2000 रुपये की राशि देने का वादा किया है। तो ये 2000 की कितनी इंस्टॉलमेंट सरकार देती है, कितनी इन्फॉर्मेशन देती है, तो सरकार ने मैसेजेस के माध्यम से जनता को अवेयर किया और उसके बाद में क्योंकि रिक्वायर्ड थी, ज़रूरत थी, लोग उसके बारे में जानने लगे और अपने पड़ोसियों को भी बताने लगे। तो इससे क्या हुआ, एक मतलब पूरा पूरा सेगमेंट जो है जानकारी का वो चलता है और लोग उसे रिसीव करते हैं और इसके बाद एक्सेप्टेबिलिटी भी उसमें होती है। अब बात आती है कि भारत में जनसंपर्क का उद्भव। जो मैंने अब तक आपको बात बताई वह बात जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझे तो करंट पर्सपेक्टिव की वो बात जो मैंने आपको बताई वो है। अब हम लोग जब अगर बात करें तो एंशिएंट टाइम में जनसंपर्क क्या रहा और किस तरीके से जनसंपर्क होता रहा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो राजाओं की कहानियां आपने बहुत पढ़ी होंगी और बहुत सारे राजा ऐसे भी सुने होंगे जो अपना शासन चलाते चलाते इस बात को भी जानना चाहते थे कि आखिर मेरे बारे में लोग सोचते क्या हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही आप काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉस है वही जानना चाहता है कि मेरा एम्प्लॉय क्या सोचता है मेरे बारे में या लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में। तो इन सब कामों के लिए एक टूल की तरह कम्युनिकेशन को लोग इस्तेमाल करते हैं और इन्फॉर्मेशन का गैदरिंग करना और इन्फॉर्मेशन का डिसिमिनेशन करना, उसके अकॉर्डिंग ही वो ये सारा काम करते हैं। आपने राजाओं की कहानी पढ़ी होगी जो यह जानने के लिए कि लोग उनके प्रशासन के बारे में क्या सोचते हैं वेश बदल कर राज्य का चक्कर काटते थे, चाहे वो भारत के राजा रहे हों या फिर मतलब मुस्लिम शासकों में सुल्तान या फिर उनके वो रहे हों। तो मशहूर सुल्तान एक हारून अल रशीद खुद यह जानने के लिए कि लोग उनकी हुकूमत के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, हर रात वेश बदल कर घूमा करते थे। ये आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। अब जब हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिकेशन को समझने की बात करते हैं तो जो लोग राजस्थान की पृष्ठभूमि के हैं या फिर जो लोग मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि से हैं, ये सारे के सारे जो लोग हैं इनके पास में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जनसंपर्क की करने की। एंशिएंट इंडिया की मैं बात करता हूँ तो पेशेवर भाट राजा और रानी के यशगान के लिए दरबार में बुलाए जाते थे। ऐसे लोग भी होते थे जो राजा को लोगों की सोच और नज़रिए के बारे में सूचित करते थे। रामायण में एक चरित्र भद्र नाम का है जो राम को प्रजा की अनुभूतियों और दृष्टिकोण बताता है। ये सभी प्राचीन भारत में अस्तित्व में रहे जनसंपर्क के उदाहरणों में से कुछ हैं। गौतम बुद्ध से शंकराचार्य, गुरु नानक और कबीर, तब हमारे सभी प्रेरक ऐसी भाषा में संप्रेषण करते थे और जिसे लोग समझने में आसान पाते थे। ये सब दक्ष कम्युनिकेटर थे, दक्ष संप्रेषक थे। मतलब दक्ष संप्रेषक का मतलब हुआ कि इन्होंने लोगों को जागरूकता भी कराई, इनकी स्वीकार्यता इनके मैसेजेस की बढ़ी और लोगों ने उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना भी शुरू किया। नानक की गुरुवाणी को लोग लगातार सुनते पढ़ते, बड़ी आस्था के साथ में पढ़ते और सुनते आए। लोगों ने गुरु नानक देव को फॉलो किया और ना सिर्फ फॉलो किया, उनकी जो शिक्षाएं रहीं उनको लोगों ने फॉलो किया, उनके अकॉर्डिंग चलना शुरू किया, उनके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना शुरू किया, उनकी स्वीकार्यता हुई और उस पर लोगों ने अंतर्क्रिया करना शुरू किया। ऐसे ही जब हम कबीर को सुनते हैं या शंकराचार्य जी ने जो जो भी कुछ लिखा या गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी थी जो शिक्षा थी उन सब में भी पूरा का पूरा एक जनसंपर्क का कॉन्सेप्ट बड़े ब्रॉड लेवल पे हम लोग देखते हैं समझते हैं और सीखते भी हैं। अगर हम लोग बात करें कि दक्ष संप्रेषक एक शब्द आता है कि होता क्या है, संप्रेषक की दक्षता का अन्य श्रेष्ठ उदाहरण देकर के मैं आपको समझाता हूँ कि दक्ष का मतलब है क्या तीनों एलिमेंट्स वो जो कम्युनिकेशन आपने किया वो तीनों एलिमेंट फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे एक मोमेंट्स को ले लेते हैं, वो मोमेंट्स है 1930s का इंडियन कॉन्टेस्ट में वो मोमेंट रहा जिसमें नमक तोड़ो आंदोलन जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, 1930s का नमक तोड़ो आंदोलन भारत में 19th century का सबसे बड़े सत्याग्रह आंदोलनों में से एक था और टाइम्स मैगजीन ने इसको उस सदी का सबसे बड़ा पीसफुल मूवमेंट भी कहा है। गांधी जी को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सारे देश को एकजुट करने में सफलता उसी समय मिली और यह पहली बार मास लेवल पे ब्रॉड लेवल पे यह संभव हो पाया कि देश के हर जाति के नागरिक, हर तबके का व्यक्ति, हर समाज का एसोसिएशन गांधी जी को प्राप्त हुआ और लोग पहली बार अपने घरों से निकले और 1930s की डांडी यात्रा और लोगों का टोटली सपोर्ट जो है वह मिला और एक मूवमेंट जो है क्योंकि कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट इसमें गांधी ने जो कम्युनिकेट किया और जो पब्लिक रिलेशन किया जनसंपर्क किया गांव से गांव का जनसंपर्क 300 किलोमीटर की इस यात्रा के तहत गांव से गांव का संपर्क और डोर टू डोर का संपर्क भी और मैन टू मैन का कम्युनिकेशन भी, तो एक इन्फ्लुएंसल जनसंपर्क लीडर के रूप में या नेता के रूप में कहा जाए तो गांधी जी इसमें बहुत हद तक सही बैठते दिखाई देते हैं। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नानक की शिक्षा में कितना ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में आया होगा या फिर शंकराचार्य की शिक्षाएं जब उस समय चली होंगी तो कितना ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज सोसाइटी के अंदर लाए होंगे और कितना कम्युनिकेशन में कितना स्ट्रांग कम्युनिकेशन करते होंगे और सोसाइटी के लोग उन तक पहुंच के उसकी एक्सेप्टेबिलिटी तक चीज़ें गई होंगी, क्योंकि उससे दिखता है कि आज एक मास लेवल पे मेजर लेवल पे लोग जो हैं अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन तो नहीं कह सकते जो 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 शुरुआत करने वाले जो लोग हैं जैसे बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले गौतम बुद्ध कबीरपंथी लोग हो गए, तो इन सब लोगों ने मतलब पीआर को कहीं ना कहीं समझा होगा, कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझा होगा। यहीं पर एक थ्योरी जो है हमारी कम्युनिकेशन की आ जाती है और उसको कह सकते हैं कि इंडियन थ्योरी ऑफ साधारणीकरण जो संचार के भारतीय सिद्धांतों को बताने में सफल है, बड़ी ही मतलब मेहनत के साथ में इस थ्योरी को डेवलप किया गया कम्युनिकेशन की और इसमें जो मुख्य बातें हैं वो यह है कि इंडिया के कॉन्सेप्ट में कम्युनिकेशन सिर्फ 4 या 5 एलिमेंट्स में नहीं बटा हुआ है, इसके बहुत सारे बड़े एलिमेंट्स भी हैं जिनको हमें अध्ययन करना चाहिए और वो सारे एलिमेंट दिए गए हैं। हम लोग संदेश से साधारणीकरण की तरफ पहुंचते हैं और साधारणीकरण को आत्मसात की तरफ जोड़ता है हमारा जो बड़ा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिकेशन का यही है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि आज से 200 साल पहले या 300 साल पहले भारत जब अनडिवाइडेड इंडिया था तो एट द टाइम ऑफ किंग अशोक के समय में बच्चों को बुद्ध के संदेशों के प्रसार के लिए श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार तक पब्लिक रिलेशन के लिए अशोक ने अपनी बेटी संगमित्रा को भेजा। और इतिहास के दृष्टिकोण से अगर देखें तो संगमित्रा कहीं ना कहीं इंडिया की, एंशिएंट इंडिया की पहली जनसंपर्क अधिकारी के रूप में हम लोग मान सकते हैं, संज्ञा मिल सकती है। अब जैसे बाहर की जब हम लोग बात करें तो फायान की बात कर सकते हैं, हुइनसियांग की बात हम लोग कर सकते हैं, फायान की बात कर सकते हैं, इवन बतूता भी इंडिया में आया। तो मतलब ये कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशन के अकॉर्डिंग ही लोग इस कंट्री से उस कंट्री जाया करते थे या इस देश से उस देश की यात्रा करते थे। इंडिया में भी हर एक रूलिंग टाइम पे बाहर से लोग इंडिया के कल्चर को स्टडी करने के लिए, इंडिया की पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए, इंडिया के समाज की स्टडी करने के लिए लोग आते थे। और ये हिस्ट्री में जनसंपर्क का एक तरीका था। और राजा अपने बहुत सारे जो है जनसंपर्क अधिकारी जो है दूसरे राज्यों के राजाओं के इर्द गिर्द लगाए रहते थे ताकि इससे यह पता लग सके कि सामने वाला आदमी कौन सा डिसीजन लेने जा रहा है या कौन सी जो है सूचना जो है वो लेगा। भारत में जनसंपर्क सुव्यवस्थित रूप से मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग बात करें, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो 1920s के आसपास में शुरू हुआ। अमूमन आप अंदाजा लगा लीजिए कि रेडियो की शुरुआत जब से हुई तभी से एक एस्टेब्लिश जनसंपर्क हमारे यहाँ पे जनसंपर्क की शुरुआत दिखाई देती है। और ये जो 1920 में जो जनसंपर्क की शुरुआत हुई और एक तरफ रेडियो दुनिया भर में शुरू हो रहा था, इंडिया में एक्सपेरिमेंटल रेडियो शुरू हो रहा था इस दौर में 1920s में, और दूसरी तरफ भारतीय रेल क्या कर रही थी, कम्युनिकेशन का एक और नया टूल ढूंढ रही थी जिसको हम लोग PR पब्लिक रिलेशन के रूप में जानते हैं। रेलवे करती क्या थी इसके अंदर में, रेलवे बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाती थी। PR का काम सिर्फ रेडियो पर मैसेज करना ही नहीं है, इसके अलावा रेल जो है प्रदर्शनियां, समारोह और समाचार पत्रों में विज्ञापन जैसे जनसंपर्क गतिविधियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। यानी आज से ठीक 102 साल पहले, क्योंकि हम लोग 2022 में चल रहे हैं और 1920 में रेलवे जो है इन सब कामों को शुरू कर चुकी थी। सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था इन सब कामों को करने के लिए, सैलानियों का एकत्रित होना। इंग्लैंड दोनों में सैलानियों को भारत की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया। तो भारत और इंग्लैंड दोनों के ही सैलानी जो है भारत में क्या करते थे, किस तरीके से आ जाए और किस तरीके से यहाँ के लोग जो है इसको इंडियन रेलवे को एंजॉय करें या फिर पैसा देके परचेज करके फॉरेन डॉलर्स में पैसा दे करके टिकट खरीदें। तो इस तरीके से रेलवे का ये जनसंपर्क जो है जनसंपर्क के लिए पहली शुरुआत भारत में कही जा सकती है। और पैरेलल ही दोनों चीज़ें चली। पहली चीज थी कि रेडियो की शुरुआत इंडिया में हो रही थी 1920s के आसपास, मतलब बिल्कुल अपने इनिशियल स्टेज में रेडियो था। और 1919 में एक एक्सपेरिमेंट रेडियो का हो गया था और रेडियो ने जनसंपर्क को बहुत एनहेंस किया, बहुत इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन के लिए बहुत सारा काम किया। तो ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। सरकारी जनसंपर्क संरचना, अब हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे सरकारी जनसंपर्क संरचना काम करती है, क्या इसके फंक्शनैलिटीज़ हैं, किस तरीके से जो जनसंपर्क जो है पूरा काम करता है। भारत जैसे लोकतंत्र में आप मानेंगे कि सरकार के अस्तित्व के लिए जनसमर्थन की आवश्यकता होती है, इसीलिए सरकार को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सूचित प्रेषित करना होता है। लोगों का दृष्टिकोण बदल कर अंततः लोगों का समर्थन पाना होता है। तो आपको समझ में आया कि लोगों का दृष्टिकोण बदल कर अंततः लोगों का समर्थन पाना होता है। जनसंपर्क का ये बड़ा मेजर काम है जो व्यापक तौर पे जनसंपर्क करता है। क्या करता है व्यापक तौर पे जनसंपर्क? जनसंपर्क करता है लोगों का दृष्टिकोण बदलकर अंत में लोगों का समर्थन पाने में सहायता करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सरकार के लिए यह क्यों आवश्यक है। वह लोगों को अपनी योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में सूचित रखने, तथा यह बताने कि ये कैसे पूरे होंगे के लिए जनसंपर्क की सहायता लेता है। अब अगर हम लोग इसको समझे तो पहले हम लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 में जाना होगा और इसी के आधार पर यह पता करना होगा कि शुरुआत में क्या हुआ जनसंपर्क की और कैसे जनसंपर्क ने काम करना शुरू किया 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार ने एक सेंट्रल पब्लिसिटी बोर्ड गठित किया था। यह जनसंपर्क भारत सरकार के सूचना उपक्रम का पहला संगठित प्रयास था। इसे फिर से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन नाम दिया गया तथा बाद में इसका नाम बदलकर ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन कर दिया गया। यह सरकार तथा प्रेस के बीच सेतु का काम करता था। इसके एजेंडे का एक बिंदु यह पता करना था कि क्या सरकार की कार्रवाई की आलोचना होती है। आज की शब्दावली में से प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहते हैं। तो यह बहुत जरूरी था कि फीडबैक के कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया 1914 में और इसे एजेंडे का एक बिंदु यह भी था कि सरकार की कार्रवाई की आलोचना होती है तो किस लेवल पे आलोचना होती है। स्वतंत्रता के बाद 1947 में भारत सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय गठित किया जिसमें जनसंपर्क का कार्य देखने वाले पेशेवरों को रखा गया। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो सरकारी मशीनरी है वो किस तरीके से काम करती है और नौकरी की क्या संभावनाएं यहाँ पे बनती हैं। देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, सूचना प्रसारण और फिल्म डिवीजन, एक नया डिवीजन और यहाँ पे ऐड होने जा रहा है सोशल मीडिया को जो कंट्रोल करेगा उसकी चर्चा चल रही है और बहुत सारी चीज़ें मतलब पास हो चुकी हैं इसमें और इसकी मॉनिटरिंग के लिए भी ये मीडिया डिवीजन यही मीडिया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ही काम करेगा। अब तक इसमें जो था ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन केंद्र, फिल्म डिवीजन, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, फोटो डिवीजन, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, पब्लिकेशन डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म पब्लिसिटी, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीजन, रिसर्च एंड रेफरेंस डिवीजन। इतने सारे डिवीजन के बाद में एक नया डिवीजन और जुड़ा है, इसमें सोशल मीडिया डिवीजन। उपरोक्त मीडिया इकाइयां लोगों को सूचित करने के लिए संप्रेषण के विधि विशेष के उपयोग की विशेषज्ञता होती है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मीडिया के वृहद प्रकार जैसे प्रेस, विज्ञापन, नाट्यकला, ग्रुप डिस्कशन, पुस्तकें, टेलीविजन, रेडियो और फिल्म का उपयोग किया जाता है। तो डिवीजन का अपना अपना सेपरेट काम है, अपनी अपने हिसाब से जो है डिवीजन काम करने लगा है और लोगों तक सूचना पहुंचाने में लोगों की मदद करता है। अब हम जो बात कर रहे थे कि सरकारी जनसंपर्क के बारे में हम लोगों ने बात किया, तीन डिवीजन की बात की, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो करता क्या है, क्या करता है पीआईबी। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह संगठन मुद्रित माध्यम के प्रेस को आधिकारिक सूचना देता है, समझ रहे हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो क्या करता है, यह संगठन मुद्रित माध्यम में प्रेस को आधिकारिक सूचनाएं पहुंचाता है। इस मीडिया इकाई के आधिकारिक नियमित रूप से विभाग विशेष की विभिन्न गतिविधियां, प्रगति संबंधी समाचार की प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। प्रत्येक मंत्रालय का एक अलग सूचना अधिकारी होता है जो पीआईबी को सूचना देता है। पीआईबी का प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर भारत सरकार का आधिकारिक प्रवक्ता होता है। अब देखिए पीआईबी काम क्या है। मान लीजिए बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, अगर कोई मिनिस्ट्री कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहती है और वह प्रोग्राम जो है किसी समाज से संबंधित है, सोसाइटी से संबंधित है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सूचना को जो मिनिस्ट्री में जो अधिकारी है वो पीआईबी को बोलेगा कि इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी होनी है और ये जो पीआईबी है ये मीडिया में ये सूचना दे देगा। अभी हम लोगों को जो समझना है वो यह समझना है कि आखिर जनसंपर्क के टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के जनसंपर्क होते हैं। तो जनसंपर्क का जो प्रकार है और जनसंपर्क के प्रकार के बारे में जानने से पहले कुछ मोटी मोटी बातें भी हम लोग को समझ लेनी चाहिए, जैसे जनसंपर्क का उद्देश्य क्या है। तो जनसंपर्क के तीन मोटे उद्देश्य मैंने आपको पहले भी बताए, अभी फिर मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों जनसंपर्क किया जाता है। एक उत्पाद के लाभ के बारे में निश्चित श्रोताओं को शिक्षित करना। लाभ के कॉन्सेप्ट में या कंसर्न में आप किसी भी तरीके का लाभ समझ सकते हैं, जैसे किसी उत्पाद का लाभ लेना हो, प्रोडक्ट हो, कोई आटा हो, दाल का प्रोडक्ट हो, चीनी किसी को बेचना है, या फिर कोई नया स्टार्टअप शुरू करना है, उसका जनसंपर्क पीआर है, या किसी ने नया हॉस्पिटल खोला है, नया स्कूल खोला है, तो इसका जनसंपर्क करना है कि लोगों को अवेयर करना है कि आइए हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए, या फिर आइए हमारी जो जो शॉप है, ये जो हमारी जो शॉप है वो इतना डिस्काउंट में इतना आपको सामान देगा, हमारे यहाँ से लीजिए। तो ये एक उत्पाद के लाभ के बारे में निश्चित श्रोताओं को शिक्षित करना जनसंपर्क का पहला उद्देश्य। दूसरा, संगठन के लिए सद्भाव बनाना। और अंतिम, संगठन की प्रतिष्ठा को सृजित करना, बनाए रखना, सुरक्षित रखना तथा बनाना। ये जनसंपर्क के उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्यों में से मुख्य उद्देश्य हैं। अब उत्पाद संपर्क क्या है? ये जनसंपर्क का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसको हम उत्पाद जनसंपर्क के नाम से जानते हैं। जब आप बाजार जाते हैं तो आपको साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट के कुछ नए उत्पाद मिलते होंगे। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसको दुकान में आकर्षक ढंग से सजाकर रखा जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि सेल्समैन या सेल्स वुमेन बाजार में इन नए उत्पादों के फायदे बताते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि उत्पाद क्या करना है, बेचना है। ये किसी नए उत्पाद को लाने या उसके परिचित हेतु एक जनसंपर्क अभ्यास है जिसमें लोगों को इस प्रकार इसे खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इनको बाजार में मौजूद होने के बारे में जानकारी बनाकर बाजार में मौजूद इसी प्रकार के अन्य उत्पादों से इनको अलग बताकर और उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु उत्पादक का नमूना देकर किया जाता है। उत्पाद पर भी खरीद पर छूट का प्रस्ताव देकर, या फिर सेल्स पर्सन ने कभी किसी उत्पाद का नमूना लोगों तक दिया हो। नमूने के आधार पर मैं आपको बताऊं, जैसे कि कोई भी नई दवाई जब मार्केट में आती है तो MR जो होता है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए डॉक्टर को कंसर्न करता है, डॉक्टर को बताता है कि ये जो मेडिसिन है वो मेडिसिन जो है इस चीज के लिए बनाई गई है और ये इस जगह पर अप्लाई होगी। इसके बाद डॉक्टर और ज़्यादा डिटेल लेता है कि यह जो मेडिसिन है वो किस तरीके से बॉडी पे फंक्शन करेगी, क्या किस किस करके किस एक्शन और रिएक्शन करेगी। जिसके बाद डॉक्टर यह तय करता है कि हाँ, ये उत्पाद मार्केट में लोगों को देने लायक है कि नहीं है। तो हर प्रोडक्ट के लिए जनसंपर्क ज़रूरी है और आज के दौर में बिना जनसंपर्क के कोई प्रोडक्ट मार्केट में बहुत जल्दी लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा या सही समय पर लोगों तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ये उत्पाद संपर्क बहुत बड़ा एरिया है जनसंपर्क का और बहुत बड़े लेवल पे यह काम किया जाता है। हर एक उत्पाद के लिए जनसंपर्क जरूरी है। कर्मचारी संपर्क करना, ये एक और प्रकार है जनसंपर्क का, कर्मचारी संपर्क। और इसमें होता क्या है, एम्प्लॉय रिलेशंस मेंटेन करता है, कंपनी की गतिविधियों पर आवश्यक सूचना देने वाले न्यूज़लेटर्स, बुलेटिन बोर्ड्स और उपहार के तौर पर प्रोत्साहन राशि या फिर कुछ भी, कर्मचारी तथा उनके परिजनों को शिक्षा के अवसर देना। तो आज का जो हमारा पूरा विषय था, जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो जनसंपर्क एक परिचय के नाम से था। नमस्कार।